एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने ना 20वीं सदी के पॉलिटिकल थॉट को मतलब बहुत गहराई से बदला।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सर कार्ल पॉपर की बहुत ही मशहूर किताब खुला समाज और उसके दुश्मन, मतलब दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। और ये किताब देखिए सिर्फ एकेडमिक लोगों के लिए नहीं है।
सही कहा,
ये तो हर किसी के लिए जरूरी है जो भी आज की दुनिया को हम कह सकते हैं समझना चाहता है।
हाँ, क्योंकि ये उदार लोकतंत्र और जो व्यक्तिगत आजादी है उसकी बड़ी पुरजोर वकालत करती है, और साथ ही ये हमें उन विचारधाराओं की जड़ों तक ले जाती है जो इस खुलेपन की दुश्मन है।
बिल्कुल, जैसे फासीवाद या दूसरी तरह की जो अधिनायकवादी सोच होती है।
और आज जिस तरह दुनिया भर में अलग अलग आइडियोलॉजीज के बीच टकराव बढ़ रहा है, उसे समझने के लिए पॉपर का नजरिया एक बेहद अहम रोशनी डालता है, मुझे लगता है।
हाँ बिल्कुल, तो चलिए आज इसी किताब के पन्नों में छिपे जो विचार हैं उनकी गहराई में उतरते हैं थोड़ा।
चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से। सर कार्ल पॉपर, जन्म 1902 में ऑस्ट्रिया में हुआ और 1994 में उनका निधन हुआ। एक ब्रिटिश दार्शनिक थे वो, और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में उनकी गिनती होती है।
हाँ, उनका काम दो मुख्य एरियाज में फैला है, एक तो विज्ञान का दर्शन फिलॉसफी ऑफ साइंस और दूसरा राजनीतिक दर्शन। और दिलचस्प बात यह है कि उनके जो पॉलिटिकल विचार हैं वो उनके वैज्ञानिक विचारों से काफी गहरे जुड़े हुए हैं।
अच्छा, वो कैसे, जरा बताइए।
देखिए, विज्ञान में पॉपर का सबसे मशहूर आइडिया है असत्यता की कसौटी या फॉल्सिफिकेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी थ्योरी वैज्ञानिक तभी मानी जाएगी जब उसे गलत साबित करने का कोई तरीका हो, मतलब कोई टेस्ट हो जिससे वो गलत प्रूव हो सके। अगर किसी विचार को गलत साबित ही नहीं किया जा सकता तो वो विज्ञान नहीं है, वो फिर आस्था है या हठधर्मिता है।
यानी वैज्ञानिक सिद्धांत को हमेशा आलोचना और परीक्षण के लिए खुला होना चाहिए। उसमें ये गुंजाइश होनी चाहिए कि वो गलत साबित हो सकता है।
बिल्कुल, एग्जैक्टली। और पॉपर ने इसी लॉजिक को, इसी तर्क को समाज और राजनीति पर लागू किया। उनका मानना था कि जैसे विज्ञान में कोई अंतिम सत्य नहीं होता, वैसे ही राजनीति में भी कोई परफेक्ट समाज या अंतिम समाधान नहीं होता।
हाँ,
समाज को भी लगातार आलोचना, बहस और सुधार के लिए खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए।
और उनका ये नज़रिया सिर्फ किताबी नहीं था, जैसा आपने कहा। उन्होंने तो अपनी आंखों से ऑस्ट्रिया में नाज़ीवाद और फासिज्म का उदय देखा था। वो यहूदी मूल के थे तो उन्हें 1937 में भागकर न्यूजीलैंड जाना पड़ा।
हाँ, और वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भयानक माहौल के बीच उन्होंने खुला समाज और उसके दुश्मन लिखी। वो इसे हिटलर और स्टालिन जैसे तानाशाहों के खिलाफ अपना वॉर एफर्ट मानते थे, मतलब कलम की लड़ाई। तो उन्होंने देखा कि कैसे जो अधिनायकवादी विचारधाराएं हैं वो आलोचना को दबा देती हैं, खुद को अचूक मानती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छद्म विज्ञान स्यूडो साइंस होता है।
तो अब आते हैं किताब पर। इसका मूल सार क्या है, ये किताब करती क्या है असल में?
पॉपर इस किताब में वेस्टर्न फिलॉसफी के इतिहास की एक तरह से चीरफाड़ करते हैं। वो उन विचारों की जड़ें खोजते हैं जिनसे ये अधिनायकवादी सोच पनपती है। उनके दो मुख्य मकसद थे ऐसा कह सकते हैं।
पहला तो था इतिहासवाद, हिस्टोरिसिज्म नाम की एक सोच का पर्दाफाश करना। मतलब पॉपर मानते थे कि इतिहास के किसी पहले से तय रास्ते या अंजाम में यकीन करना ही तानाशाही की तरफ ले जाता है।
हाँ बिल्कुल, ये कि हिस्ट्री का एक लॉ है ऐसा ही होगा, इस सोच को खतरनाक मानते थे।
और दूसरा मकसद था
इसके मुकाबले में खुले समाज का मॉडल पेश करना, एक ऐसा समाज जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तर्क पर, बहस पर,
गलतियों से सीखने की विनम्रता पर,
हाँ, और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर टिका हो।
किताब की शुरुआत होती है प्राचीन ग्रीस से। पॉपर बताते हैं कि कैसे वो पुराने कठोर कबाइली बंद समाज थे और फिर एथेंस जैसे शहरों में एक नए गतिशील व्यक्तिवादी खुले समाज का जन्म हुआ।
लेकिन इस बदलाव के साथ एक टेंशन भी आया, मतलब आजादी की जो अनिश्चितता होती है उसका तनाव, जिसे पॉपर सभ्यता का तनाव या स्ट्रेन ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं।
और यही एंट्री होती है प्लेटो की, जिन्हें अक्सर महान दार्शनिक माना जाता है, लेकिन पॉपर का नजरिया तो एकदम अलग है।
वो कहते हैं कि प्लेटो इस नई आजादी और अनिश्चितता से डर गए और वापस एक स्थिर, अपरिवर्तनशील, एक श्रेणीबद्ध समाज की वकालत करने लगे।
हाँ, पॉपर प्लेटो की मशहूर किताब रिपब्लिक को कोई आइडियल स्टेट की कल्पना नहीं मानते, वो कहते हैं ये तो एक अधिनायकवादी टोटलिटेरियन स्टेट का ब्लूप्रिंट है।
ये तो काफी काफी रेडिकल बात है।
है तो, और फिर पॉपर इस सोच के धागों को मॉडर्न जमाने तक लाते हैं, खासकर हेगल और मार्क्स में। वो मानते हैं कि इन विचारकों ने प्लेटो के अधिनायकवादी विचारों को ही नए और ज्यादा खतरनाक रूपों में जिंदा किया। हेगल ने राज्य को बहुत महिमामंडित किया, राष्ट्रवाद को हवा दी। और मार्क्स, पॉपर मार्क्स के बारे में क्या कहते हैं?
मार्क्स के मामले में पॉपर थोड़े न्यूएंस्ड हैं, मतलब उनका विश्लेषण थोड़ा जटिल है। वो मार्क्स की शुरुआती मानवीय चिंताओं और पूंजीवाद की जो उन्होंने आलोचना की उसकी कदर करते हैं, लेकिन वो मार्क्सवाद को एक छद्म वैज्ञानिक धर्म मानते हैं।
क्यों?
क्योंकि वो इतिहास की कथित अनिवार्यता पर आधारित था, जैसे ये मानना कि पूंजीवाद का खत्म होना और साम्यवाद का आना तय है।
बिल्कुल।
पॉपर कहते हैं कि ये वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं बल्कि भविष्यवाणियां थीं, और वो भी ऐसी भविष्यवाणियां जिन्हें गलत साबित किया जा सकता था और जो बाद में असल में गलत साबित हुई भी।
अच्छा,
तो किताब का जो मूल द्वंद्व है वो यही है, बंद समाज बनाम खुला समाज। एक तरफ निश्चितता है, सामूहिक पहचान है, तयशुदा लक्ष्य है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर।
और दूसरी तरफ खुला समाज है जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता है, अनिश्चितता को स्वीकारता है और समस्याओं को धीरे धीरे तर्क और आलोचना से सुलझाने पर जोर देता है। तो पॉपर का लक्ष्य इसी नाजुक खुले समाज को उसके दुश्मनों से बचाने के लिए एक तरह से वैचारिक हथियार देना था।
चलिए, अब किताब के दो हिस्से हैं, उन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहला खंड है प्लेटो का जादू, द स्पेल ऑफ प्लेटो। यहाँ पॉपर इतिहासवाद पर अपना मुख्य हमला बोलते हैं।
वो कैसे? पॉपर इतिहासवाद को कैसे परिभाषित करते हैं और उसे प्लेटो से कैसे जोड़ते हैं?
पॉपर कहते हैं कि इतिहासवाद वो विश्वास है कि इतिहास का एक तयशुदा रास्ता है, कुछ नियम हैं जो भविष्य तय करते हैं, और प्लेटो इसी सोच के कह सकते हैं शिकार थे। वो मानते थे कि हर सामाजिक बदलाव किसी आदर्श रूप से एक तरह का पतन है, गिरावट है। इसलिए उनका राजनीतिक लक्ष्य था बदलाव को रोकना, इतिहास को जमा देना, फ्रीज कर देना।
और इसके लिए उन्होंने रिपब्लिक में क्या नुस्खे दिए? पॉपर उनकी आलोचना कैसे करते हैं?
और दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग, वो तो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति शासन करे, सबसे बुद्धिमान को शासन करना चाहिए।
पॉपर कहते हैं ये सवाल ही गलत है कि शासन किसे करना चाहिए, ये पूछना ही आपको अधिनायकवाद की तरफ ले जाता है। सही सवाल ये है, हम शासकों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर वो बुरा शासन करें तो बिना खून खराबे के उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं।
अच्छा,
दार्शनिक राजा का विचार असल में असीमित तानाशाही का एक लाइसेंस है पॉपर के अनुसार।
फिर पॉपर प्लेटो की काल्पनिक सामाजिक इंजीनियरिंग, यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग की आलोचना करते हैं। ये क्या है?
इसका मतलब है एक आदर्श समाज बनाने के लिए मौजूदा समाज को पूरी तरह मिटाकर एक ब्लूप्रिंट के आधार पर नए सिरे से गढ़ने की कोशिश।
बिल्कुल, ऊपर से नीचे तक। पॉपर चेतावनी देते हैं कि ये हमेशा हिंसा और दमन की ओर ले जाता है। आप भविष्य के किसी काल्पनिक स्वर्ग के लिए आज के इंसानों की बलि नहीं चढ़ा सकते।
पॉपर तो यहां तक कहते हैं कि प्लेटो ने यूजेनिक्स, सेंसरशिप और महान झूठ, नोबल लाए का समर्थन किया, इसलिए उन्हें मानवतावादी कहना वो ठीक नहीं है।
दिलचस्प बात यह है कि पॉपर प्लेटो के गुरु सुकरात उनको खुले समाज का हीरो मानते हैं, एक ऐसा विचारक जो सवाल पूछता था, बहस करता था और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देता था। पॉपर के अनुसार प्लेटो ने सुकरात की इसी विरासत के साथ धोखा किया।
हाँ बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे खंड पर, भविष्यवाणी का उच्च ज्वार, हेगेल, मार्क्स और उसके बाद,
द हाई टाइड ऑफ प्रोफेसी, हेगेल, मार्क्स एंड द आफ्टरमैथ। यहाँ पॉपर आधुनिक युग के नबियों पर निशाना साधते हैं।
पहले हेगेल, पॉपर उन्हें कैसे देखते हैं? पॉपर हेगेल को प्लेटो का ही आधुनिक अवतार मानते हैं, जिसने राज्य को लगभग ईश्वर का दर्जा दे दिया और व्यक्ति को उसके अधीन कर दिया। हेगेल का मशहूर द्वंद्ववाद है ना, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस।
हाँ हाँ।
पॉपर के लिए वो सत्य खोजने का तरीका नहीं था, बल्कि मौजूदा सत्ता, खासकर जो प्रशिया की राजशाही थी, उसको सही ठहराने का एक जरिया था। पॉपर हेगेल की जटिल, अस्पष्ट भाषा की भी बहुत आलोचना करते हैं, जो तर्क से ज्यादा रहस्यमयी लगती है।
और फिर आते हैं मार्क्स, जिनके विचार आज भी बहुत प्रभावशाली हैं। पॉपर का मार्क्स का विश्लेषण कैसा है?
जैसा हमने पहले कहा, पॉपर मार्क्स की शुरुआती चिंताओं और पूंजीवाद के उनके विश्लेषण की कुछ हद तक प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो मार्क्स की पद्धति को, उनके मेथड को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। मार्क्स का आर्थिक इतिहासवाद, मतलब ये मानना कि इतिहास के नियम वर्ग संघर्ष और उत्पादन के साधनों से तय होते हैं, पॉपर के लिए वो इतिहासवाद का ही एक और रूप था।
अब मार्क्स की भविष्यवाणियां, जैसे पूंजीवाद का अनिवार्य पतन होगा, मजदूर वर्ग लगातार गरीब होता जाएगा, फिर क्रांति होगी और फिर वर्गहीन समाज आएगा।
हाँ, पॉपर कहते हैं कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं बल्कि भविष्यवाणियां थी, प्रोफेसीज थी, और इतिहास ने उन्हें गलत साबित कर दिया। मजदूर वर्ग गरीब होने के बजाय ज्यादातर पश्चिमी देशों में समृद्ध हुआ।
हाँ, ये तो हुआ।
मध्यम वर्ग गायब होने के बजाय बड़ा, राज्य कमजोर होने के बजाय और ताकतवर हुआ, और क्रांतियां जरूरी नहीं कि सबसे विकसित पूंजीवादी देशों में हुई बल्कि कहीं और हुई।
लेकिन जब मार्क्स की भविष्यवाणियां गलत साबित हुई तो मार्क्सवादियों ने सिद्धांत क्यों नहीं छोड़ा, ये एक अहम सवाल है।
यही तो पॉपर का मुख्य पॉइंट है। उन्होंने सिद्धांत को छोड़ने के बजाय उसकी लगातार नई नई व्याख्याएं करनी शुरू कर दी, उसमें पैबंद लगाने लगे, एडहॉक हाइपोथेसिस जोड़ने लगे ताकि उसे गलत साबित ही ना किया जा सके।
अच्छा,
इस तरह मार्क्सवाद एक बंद हठधर्मी व्यवस्था बन गया जिसे तथ्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक एक धर्म की तरह, एक क्लोज सिस्टम।
तो अगर काल्पनिक इंजीनियरिंग और क्रांति खतरनाक है तो पॉपर का विकल्प क्या है? समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए फिर?
पॉपर का जवाब है टुकड़ों में सामाजिक इंजीनियरिंग, पीसमील सोशल इंजीनियरिंग, यानी बड़े बड़े यूटोपिया बनाने के सपने देखने के बजाय समाज की ठोस विशिष्ट समस्याओं जैसे गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, अन्याय, इनको एक एक करके धीरे धीरे व्यावहारिक तरीकों से हल करने की कोशिश करना।
ये तो वैज्ञानिक तरीके जैसा है, एक समस्या पहचानो, एक समाधान यानी पॉलिसी का प्रस्ताव रखो, उसे लागू करो, देखो कि वो काम करता है या नहीं।
बिल्कुल।
और अगर नहीं करता तो उसे सुधारो या बदल दो।
बिल्कुल, इसमें विनम्रता है, ये मानना कि हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं, हम गलतियां कर सकते हैं और हमें उनसे सीखना होगा। ये क्रांति के जरिए सब कुछ एक झटके में बदलने के हिंसक सपने के एकदम उलट है। निष्कर्ष ये कि इतिहास का कोई तयशुदा अंत नहीं है, भविष्य खुला है और ये हमारे आज के चुनावों और कामों पर निर्भर करता है।
चलिए अब इस किताब के कुछ सबसे जरूरी थीम्स या संदेशों को समेटते हैं।
हाँ,
पहला तो जाहिर है खुला बनाम बंद समाज।
हाँ, ये पूरी किताब का दिल है। एक तरफ व्यक्ति की आजादी, सवाल पूछने का हक, अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता, दूसरी तरफ समूहों के आगे व्यक्ति का समर्पण, बिना सवाल किए मान लेना और बदलाव का डर।
और ये तनाव हमें आज भी अपने समाजों में दिखता है, यहाँ तक कि अपने परिवारों या समुदायों में भी देखने को मिलता है ना, जहाँ कभी कभी परंपरा या सामूहिक पहचान के नाम पर व्यक्तिगत पसंद या आलोचना को दबा दिया जाता है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है इतिहासवाद की तीखी आलोचना। ये मानना कि इतिहास किसी पटरी पर चल रहा है और उसका अंतिम स्टेशन हमें पता है, ये सोच खतरनाक क्यों है?
पापा कहते हैं ये खतरनाक है क्योंकि ये हमें जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे आज के कर्मों का क्या मतलब है ना? और इससे भी बुरा ये भविष्य के किसी महान लक्ष्य के नाम पर आज के इंसानों पर जुल्म को सही ठहरा सकता है।
सही कहा। हमें उन दावों से सावधान रहना चाहिए जो कहते हैं कि इतिहास हमारी तरफ है या ऐसा होना तो तय है। ये बड़े खतरनाक दावे हो सकते हैं।
तीसरा अहम विचार, टुकड़ों में सुधार बनाम काल्पनिक सुधार, प्रैक्टिकल छोटे कदम बनाम बड़ी क्रांतिकारी छलांग।
हाँ, पॉपर बड़े बड़े वादों और योजनाओं के बजाय ठोस समस्याओं के ठोस समाधान पर जोर देते हैं। यह हमें सिखाता है कि शायद असली बदलाव बड़ी रैलियों या नारों से नहीं आता,
बल्कि
जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों, संस्थाओं और नीतियों से आता है जो धीरे धीरे लगातार सुधार लाने की कोशिश करते हैं।
और एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा विवादास्पद विचार है सहिष्णुता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। इसका क्या मतलब है?
कॉपर का तर्क है कि अगर एक सहिष्णु समाज हर तरह की विचारधारा को बिना किसी सीमा के बर्दाश्त करता है, जिसमें वो विचारधाराएं भी शामिल हैं जो सहिष्णुता को ही खत्म करना चाहती हैं, तो वो समाज अंततः असहिष्णु ताकतों के हाथों नष्ट हो जाएगा। यानी सहिष्णुता को बचाने के लिए हमें उन लोगों या विचारों के प्रति असहिष्णु होना पड़ सकता है जो सहिष्णुता के फ्रेमवर्क को ही खत्म करना चाहते हैं।
ये तो बड़ी जटिल बात है, खासकर आज के दौर में जब अभिव्यक्ति की आजादी और हेट स्पीच के बीच की रेखा पर इतनी बहस होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सहिष्णुता कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, उसकी भी सीमाएं हैं।
पॉपर के अनुसार हाँ, लोकतंत्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, उन लोगों से भी जो लोकतंत्र का इस्तेमाल करके ही उसे खत्म करना चाहते हों।
और आखिरी लेकिन शायद सबसे बुनियादी संदेश, आलोचनात्मक विवेकवाद, क्रिटिकल रैशनलिज्म और असत्यता, फेलिबिलिज्म। ये मानना कि हम गलत हो सकते हैं।
जब हम ये माने कि शायद हम गलत हों, ये बौद्धिक विनम्रता जो है वो कट्टरता का सबसे बड़ा दुश्मन है।
सही बात है। ये हमें सिखाता है कि बहस का मकसद जीतना नहीं होना चाहिए,
बल्कि मिलकर सच के ज्यादा करीब पहुंचना होना चाहिए।
इस किताब में वाकई कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ साझा करते हैं क्या?
जरूर। एक जो मुझे हमेशा याद रहती है वो है, धरती पर स्वर्ग बनाने की कोशिश हमेशा नर्क ही पैदा करती है।
The attempt to make heaven on earth invariably produces hell.
वाह, कितनी गहरी बात है। मतलब परफेक्ट समाज बनाने के जुनून में हम अक्सर इंसानों पर जुल्म कर बैठते हैं, क्योंकि असल इंसान कभी उन परफेक्ट खांचों में फिट नहीं होते, है ना?
बिल्कुल। और सहिष्णुता पर वो बात, सहिष्णुता के नाम पर हमें असहिष्णु को सहन न करने का अधिकार मांगना चाहिए।
We must claim in the name of tolerance the right not to tolerate the intolerant.
ये हमें याद दिलाता है कि उदार मूल्यों की रक्षा के लिए कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। आजादी की रक्षा करनी पड़ती है, वो अपने आप बनी नहीं रहती।
एक और जो नीति निर्माण के लक्ष्य के बारे में सोचने का नजरिया बदल देता है, सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा खुशी के बजाय सभी के लिए न्यूनतम टाली जा सकने वाली पीड़ा की मांग करनी चाहिए।
ये बहुत व्यवहारिक बात है। खुशी को मापना मुश्किल है, किसको कितनी खुशी मिली ये कैसे जाने, लेकिन दुख, दर्द, अन्याय ये ठोस चीजें हैं।
हाँ, ये दिखती हैं।
तो सरकार या समाज का पहला काम इन ठोस बुराइयों को कम करना होना चाहिए, न कि किसी हवाई खुशी का पीछा करना।
बिल्कुल।
और अंत में जो हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है, भविष्य पहले से तय नहीं है, हम इसके भविष्यवक्ता नहीं बल्कि इसके निर्माता हैं। ये इतिहासवाद के विचार पर सीधा प्रहार है। हम इतिहास के गुलाम नहीं बल्कि उसके रचयिता हैं। ये सशक्त भी करता है और जिम्मेदार भी बनाता है, दोनों चीजें हैं।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर देखें तो पॉपर की सोच हमें बड़े बड़े क्रांतिकारी वादों के बजाय छोटे व्यवहारिक सुधारों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उन नेताओं या पार्टियों का समर्थन करना जो विशिष्ट समस्याओं जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनको हल करने की बात करते हैं।
हाँ, बजाय उनके जो एक झटके में सब कुछ बदल देंगे का दावा करते हैं।
बिल्कुल। और उन दावों से सावधान रहना कि हमारे पास सारे जवाब हैं। पॉपर हमें सिखाते हैं कि ऐसी सोच खतरनाक है। हमें ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जो जवाबदेह हो, जिनकी आलोचना की जा सके और जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सके।
और व्यक्तिगत स्तर पर?
व्यक्तिगत स्तर पर शायद सबसे बड़ा सबक है असत्यता को अपनाना, ये मानना कि मैं गलत हो सकती हूँ। जब हम किसी से असहमत हों तो ये सोचने की कोशिश करना कि शायद सामने वाले की बात में भी कुछ सच्चाई हो।
बहस को लड़ाई की तरह नहीं बल्कि सीखने के मौके की तरह देखना।
हाँ, और जानकारी के मूल्यांकन में आजकल तो सूचनाओं का सैलाब है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसका क्या करें?
यहाँ पॉपर की असत्यता की कसौटी काम आ सकती है। जब कोई बड़ा दावा या खबर सुने तो खुद से पूछें, ऐसा क्या सबूत होगा जो इस बात को गलत साबित कर दे?
अच्छा,
अगर आप ऐसा कोई सबूत सोच ही नहीं पा रहे हैं या दावा करने वाला ऐसी किसी संभावना को सिरे से खारिज करता है तो सावधान हो जाइए, वो शायद तर्क नहीं हठधर्मिता है, डॉग्मा है।
और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो सहिष्णुता वाली बात?
हाँ, ये समझना कि अभिव्यक्ति की आजादी अहम है लेकिन उसकी भी सीमाएं हो सकती हैं, खासकर जब वो हिंसा भड़काए या किसी समूह के खिलाफ नफरत फैलाए। एक स्वस्थ लोकतंत्र को अपनी रक्षा खुद करनी होती है, उसे एक्टिव रहना पड़ता है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात उभर कर आई है वो ये कि खुला समाज कितना नाजुक होता है। ये कोई अपने आप चलने वाली चीज नहीं है, इसे लगातार बचाने और पोसने की जरूरत होती है, विचारों से, तर्कों से और संस्थाओं से। और दूसरी बात, प्लेटो जैसे महान दार्शनिक की इतनी तीखी आलोचना पढ़ना वाकई चौंकाने वाला था, मतलब एकदम हिला दिया।
मेरे लिए सबसे स्थायी सबक है बौद्धिक विनम्रता का महत्व। ये मानना कि हम सब गलत हो सकते हैं, यही शायद सबसे ज्यादा मानवीय और सबसे ज्यादा जरूरी गुण है एक सभ्य समाज के लिए। और पॉपर का वो सवाल बदलना, शासन किसे करना चाहिए से शासकों को नियंत्रित कैसे करें, ये लोकतंत्र की आत्मा को पकड़ता है। ये बहुत पावरफुल आइडिया।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। इस खुले समाज को जिसमें हम उम्मीद है रहते हैं, उसे बनाए रखने में उनकी अपनी क्या जिम्मेदारी है, और वो अपने आसपास इतिहास की अनिवार्यता या किस्मत के नाम पर किए जाने वाले दावों पर कैसे सवाल उठा सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।